कल्पना कीजिए कि जिस किताब को आधी दुनिया ऐतिहासिक सच मानती है, जिसे पीढ़ियों से मतलब एक अकाट्य इतिहास की तरह पढ़ा गया हो, और अचानक कोई उठकर कहे कि ये इतिहास है ही नहीं।
हाँ, मतलब कोई कहे कि ये तो महज एक काव्यात्मक कहानी है या कोई किंवदंती है।
बिल्कुल, और ये बात कोई आज का इंटरनेट ट्रोल नहीं कह रहा है, बल्कि 19वीं सदी के सबसे बड़े विद्वान कह रहे हैं। जरा सोचिए, उस समय अकादमिक और धार्मिक दुनिया में कैसा भूचाल आया होगा।
बहुत बड़ा भूचाल। और इस बदलाव को समझना महज पुराने पन्नों को पलटना नहीं है, ये उन पन्नों के पीछे काम कर रहे इंसानी दिमाग को समझने जैसा है।
सही कहा, आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी भूचाल के केंद्र में जाने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट के इतिहास पर दिए गए एक व्याख्यान के नोट्स हैं।
और आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे जूलियस वेलहॉसन और हरमन गुंकल जैसे विद्वानों ने इन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को देखने का मतलब नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया
और कविताओं के रूप में देखा जाने लगा। ये पूरा विषय मुझे किसी ऐतिहासिक जासूसी कहानी जैसा लग रहा है।
एकदम जासूसी कहानी ही है, जहां प्राचीन पन्नों के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाया जा रहा है।
तो बिना देरी किए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। इन ग्रंथों की कहानियों की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये आखिर एक साथ जुड़े कैसे हैं, है ना?
बिल्कुल, और यहीं से ओलेनहाउसन की थ्योरी की शुरुआत होती है कि इनका निर्माण कैसे हुआ।
तो इस थ्योरी को समझने के लिए मान लीजिए एक स्क्रैपबुक की कल्पना करते हैं, एक ऐसी डायरी जिसे सदियों तक अलग अलग लेखकों ने लिखा है। किसी ने कुछ पन्ने फाड़ दिए, किसी ने नए पन्ने जोड़ दिए,
और किसी ने पुरानी लिखावट के ऊपर अपने नए विचार लिख दिए।
हाँ, और अंत में किसी ने उन सबको एक साथ सिलकर एक किताब बना दी। तो क्या वेलहॉसन का यही मानना था कि ओल्ड टेस्टमेंट भी मतलब एक ऐसी ही स्क्रैपबुक है?
उस स्क्रैपबुक वाली उपमा को अगर हम अकादमिक भाषा में कहें तो वेलहाउसन ने इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री सोर्स हाइपोथेसिस का नाम दिया था, जिसे आमतौर पर JEDP मतलब JEDP थ्योरी कहा जाता है।
अच्छा, JEDP थ्योरी। वेलहाउसन ने यह दावा नहीं किया कि ये रातों रात हुआ, बल्कि उनका तर्क था कि ये ग्रंथ, खासकर बाइबल की शुरुआती 5 किताबें, 4 मुख्य और अलग अलग स्रोतों से मिलकर बनी है,
जिन्हें सदियों के फासले पर लिखा गया और बाद में एक साथ पिरो दिया गया।
राइट,
बिल्कुल
ठीक है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने बैठकर शुरू से अंत तक सब कुछ लिख दिया होगा,
जो कि आम धारणा है।
हाँ, तो वेलहाउसन और उनके साथियों को ऐसा क्यों लगा कि ये अलग अलग स्रोतों का मिश्रण है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या देखा इन पन्नों में जो बाकियों को नजर नहीं आया?
यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने पाठ के भीतर मौजूद छोटे छोटे सुरागों को पकड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब में कुछ अध्यायों में ईश्वर को एलोहीम कहा गया है।
हाँ, एलोहीम।
हाँ, जबकि कुछ अन्य अध्यायों में अचानक से मतलब ईश्वर के लिए यहोवा या यावे शब्द का इस्तेमाल होने लगता है।
और सिर्फ नाम ही नहीं, लिखने की शैली भी पूरी तरह से बदल जाती है।
अच्छा, शैली कैसे बदलती है?
कहीं कहीं भाषा बहुत ही राजसी और औपचारिक है, तो कहीं एकदम लोक कथाओं जैसी, जिसमें ईश्वर इंसानों की तरह बगीचे में टहल रहा है।
ओह, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई लेख पढ़ रहे हों और आधा लेख शेक्सपियर की भाषा में हो और बाकी का आधा किसी आधुनिक न्यूज रिपोर्टर की भाषा में।
बिल्कुल सटीक उदाहरण है, कोई भी समझ जाएगा कि ये दो अलग अलग लोगों ने लिखा है।
वेलहॉसन ने भी यही तर्क दिया कि एक ही लेखक बार बार अपनी शैली इतने नाटकीय रूप से नहीं बदलेगा।
तो ये जो JED और P स्रोत हैं, जिनके बारे में उन्होंने बात की, ये किस समय के हैं? मैं चाहूंगी कि हम सिर्फ तारीखें ना गिनाएं, बल्कि ये भी समझें कि उस समय समाज में चल क्या रहा था।
जरूर, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सबसे पहला स्रोत है जिसे जेहोवा स्रोत कहा जाता है। वेलहाउसन के अनुसार ये लगभग 850 ईसा पूर्व के आसपास का है।
850 ईसा पूर्व, मतलब ये वो दौर था जब समाज थोड़ा आदिम था।
हाँ, इसराइल में राजाओं का शुरुआती शासन था। इसके बाद आता है ई या एलोहीम स्रोत, जो लगभग 100 साल बाद मतलब 750 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया।
ठीक है, और डी स्रोत?
तीसरा है डी या ड्यूट्रोनोमी, जो 621 ईसा पूर्व के आसपास का है। ये वो समय था जब राजा योशिया के दौरान यरूशलम में बड़े धार्मिक सुधार हो रहे थे और एक केंद्रीकृत कानून व्यवस्था बनाई जा रही थी।
और सबसे अंत में पी स्रोत आता होगा।
हाँ, सबसे अंत में आता है पी, यानी प्रिस्टली या पुरोहित स्रोत। ये 450 ईसा पूर्व का समय है, यानी जब इजरायली लोग बेबीलोन के निर्वासन से वापस लौट चुके थे।
बेबीलोन के निर्वासन के बाद, यानी जब उनका सब कुछ छिन चुका था, मंदिर टूट चुका था, और वे वापस आकर अपने धर्म को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक कहा। उस समय उन्हें अपने धर्म को बचाए रखने के लिए कड़े नियमों, वंशावलियों, कर्मकांडों और एक मजबूत पुरोहित वर्ग की जरूरत थी। इसीलिए पी स्रोत में आपको नियमों और तारीखों का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है।
अच्छा, तो वेलहाउजन ने इसी आधार पर धर्म के विकास का एक पूरा क्रम समझाया होगा।
बिल्कुल, उनका तर्क था कि प्राचीन धर्म शुरू से ही एकेश्वरवादी नहीं था।
मतलब वे शुरुआत से ये नहीं मानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है।
वेलहाउजन के अनुसार बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म का विकास बहुदेववाद, यानी बहुत से देवताओं को पूजने से शुरू हुआ, फिर वो धीरे धीरे हेनोथिज्म में बदला।
हेनोथिज्म, इसका क्या मतलब है?
हेनोथिज्म का मतलब है कि हाँ, दुनिया में और भी देवता हो सकते हैं, लेकिन हमारा देवता सबसे ताकतवर है और हम सिर्फ उसी की पूजा करेंगे।
ओह अच्छा, हमारा देवता सबसे बेहतर है वाली सोच।
हाँ, और फिर बहुत बाद में जाकर ये विचार एकेश्वरवाद में तब्दील हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर है।
विल्होसन ने इसी को ग्रंथों से जोड़ा कि धर्म पहले एकदम प्राकृतिक था, जो जे और ई में देखता है। फिर पैगंबरों के दौर में वो डी स्रोत बना, और अंत में पुरोहित धर्म या पी स्रोत, जहाँ नियमों पर सारा जोर था।
एकदम सही।
लेकिन एक सेकंड, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम वेलहाउजन की इस बात को मान लें कि सुनत की रस्म या कड़े धार्मिक नियम पी स्रोत द्वारा, यानी 450 ईसा पूर्व में जोड़े गए, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि ग्रंथों में तो ये दिखाया गया है कि ये नियम प्राचीन काल में अब्राहम या मूसा के समय से चले आ रहे थे। अगर पुरोहितों ने इन्हें बाद में लिखकर प्राचीन काल पर थोप दिया, उन्हें बैकडेट कर दिया, तो क्या ये पूरे इतिहास को मनगढ़ंत नहीं बना देता?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐतिहासिक सत्यता के नजरिए से देखें तो इसका जवाब है हाँ। वेलहाउजन की इस थ्योरी ने ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर एक बहुत गहरा प्रहार किया।
मतलब ये साबित कर दिया कि ये बातें इतिहास नहीं बल्कि बाद के पुरोहितों की जरूरतें थीं।
बिल्कुल, जिन्हें उन्होंने अतीत के नायकों के मुंह में डाल दिया। ये इतिहास का संकलन नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद वेलहाउजन इस बात से बहुत विचलित थे।
विचलित थे क्यों?
क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्या कर दिया है। 1882 में उन्होंने जर्मनी के ग्रिस्वॉल्ड विश्वविद्यालय से अपने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा दे दिया? अरे वाह, एक ऐसी थ्योरी देने के बाद जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, ये तो अपने करियर के चरम पर सब कुछ छोड़ देने जैसा है।
हाँ, क्योंकि उनके अंदर एक भारी नैतिक द्वंद्व चल रहा था। वे वहाँ थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र पढ़ाते थे। उनका काम उन नौजवान छात्रों को तैयार करना था जो आगे चलकर चर्च में पादरी बनने वाले थे।
ओ, मैं समझ रही हूँ।
वेलहाउजन ने लिखा कि उनके जो अकादमिक शोध हैं, वे छात्रों को पादरी बनने के काम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक पादरी का काम है लोगों के विश्वास को मजबूत करना।
हाँ, और वेलहाउजन क्लास में पढ़ा रहे थे कि जिस किताब पर उनका धर्म टिका है वो तो बाद के पुरोहितों की कांट छांट है।
बिल्कुल, उनकी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि वे एक तरफ आस्था को खंडित करें और दूसरी तरफ छात्रों से कहें कि जाओ लोगों की आस्था बढ़ाओ।
ये तो बहुत ही त्रासित स्थिति है, एक विद्वान जो सच की खोज में इतना आगे निकल गया कि उसने उस नींव को ही खोद डाला जिस पर वो खुद खड़ा था।
विश्वविद्यालयों में जमे रहे और वहीं से आधुनिक उदारवादी धर्मशास्त्र का जन्म हुआ।
तो अगर वेलहाउजन ने ये साबित कर दिया कि ये पूरा ग्रंथ एक स्क्रैप बुक है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि जिन लेखकों ने इस स्क्रैपबुक में चीजें लिखी, उन्हें वे कहानियां कहां से मिली?
बहुत सही सवाल है,
क्योंकि वे घटना के चश्मदीद गवाह तो थे नहीं। और यहीं पर हमारी कहानी में एक नए और अहम किरदार की एंट्री होती है, हरमन गुंगकेल।
हाँ, हरमन गुंगकेल।
जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, वेलहाउजन केवल लिखित दस्तावेजों तक सीमित थे।
बिल्कुल,
लेकिन गुंगकेल उन लिखित शब्दों के भी पीछे जाना चाहते थे, है ना, उन मौखिक परंपराओं की तरफ जहां से ये कहानियां पैदा हुई थी।
एकदम सही, गुंगकेल ने वेलहाउजन की थ्योरी को नकारा नहीं बल्कि उसे एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, दस्तावेज बाद में जुड़े, लेकिन लेखकों ने ये कहानियां खुद नहीं गढ़ी।
मतलब उन्होंने वो लिखा जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से चला आ रहा था।
हाँ, गुंकेल के काम को समझने के लिए उन्होंने कुछ जर्मन शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहला है गटुंग, जिसका अर्थ है साहित्यिक प्रकार या जॉनर।
जॉनरा।
हाँ, उनका मानना था कि किसी भी प्राचीन पाठ को पढ़ने से पहले ये तय करना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या ये एक कानूनी दस्तावेज है, एक शोक गीत है या कोई लोक कथा है?
क्योंकि आप एक कविता को उसी तराजू पर नहीं तौल सकते जिस पर आप एक कानूनी अनुबंध को तौलते हैं। सही,
बिल्कुल।
इसको मैं ऐसे देखती हूँ, धर्म ग्रंथों के अध्ययन में दो तरह की आलोचनाएं काम करती हैं। एक लोअर क्रिटिसिज्म, जहां विद्वान देखते हैं कि क्या अनुवाद में कोई गलती हुई है या स्पेलिंग मिस्टेक है, एक तरह का प्रूफ रीडिंग।
सही है।
और दूसरी हायर क्रिटिसिज्म, जिसमें विद्वान लेखक की मंशा और समाज की जांच करते हैं। तो साफ है कि गुंकेल हायर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वे शब्दों की स्पेलिंग नहीं, शब्दों की आत्मा खोज रहे थे।
और उस आत्मा को खोजने के लिए उन्होंने दूसरा जर्मन शब्द दिया, सिट्स इम लेबन। सिट्स इम लेबन, जिसका मतलब है जीवन की स्थिति।
जीवन की स्थिति। मतलब वो सामाजिक संदर्भ जिससे कहानी पैदा हुई।
हाँ, गुंकेल का कहना था कि हर कहानी के पीछे एक सामाजिक हालात होते हैं। वो किस मौके पर गाई जाती थी, क्या वो अलाव के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती थी या किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा थी।
तो गुंकेल असल में वेलहॉसन से भी ज्यादा पीछे समय में जा रहे थे।
हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यही है कि गुंकेल ने इन कहानियों को वेलहॉसन के अनुमान से कहीं ज्यादा प्राचीन माना। जब कोई लिखित परंपरा नहीं थी, तब भी ये कहानियां खानाबदोश कबीलों के बीच जिंदा थीं।
लेकिन जब गुंकेल ने इन अलाव के पास सुनाई जाने वाली कहानियों की जांच की, तो वे एक विवादास्पद नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्पत्ति की किताब इतिहास नहीं, बल्कि किंवदंती और कविता है।
बिल्कुल।
अब यहाँ एक आम सवाल आता है, अगर कोई चीज किंवदंती है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि वो झूठ है?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन गुंकेल के लिए इसका जवाब था ना। गुंकेल ने जोर देकर कहा कि किंवदंतियां झूठ नहीं हैं, बल्कि वे कविता का एक विशेष रूप हैं।
अच्छा।
उनका मानना था कि जब आप किसी बहुत गहरे अलौकिक विचार को व्यक्त करना चाहते हैं, तो सूखा तथ्यात्मक गद्य बहुत ही कमजोर साबित होता है।
मतलब अगर आपको प्यार या ब्रह्मांड की विशालता को समझाना है, तो आप एक एक्सेल शीट या न्यूज रिपोर्ट नहीं बना सकते। आपको कविता का सहारा लेना ही पड़ेगा।
एकदम सही। धार्मिक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कविता ही उनकी भावनाओं के साथ न्याय कर सकती थी।
लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेच है। अगर हम इन कहानियों को देखें तो इनमें बहुत से चमत्कार होते हैं, जैसे जानवरों का बात करना या अब्राहम के सिर्फ 318 आदमियों का एक विशाल सेना को हरा देना।
हाँ, चमत्कार तो हैं।
क्या गुंकेल ने इन चीजों को देखकर ये तय किया कि ये इतिहास नहीं हो सकता?
यहाँ गुंकेल की एक दार्शनिक पूर्वधारणा काम कर रही थी। उन्होंने पहले से ही ये मान लिया था कि चमत्कार नहीं हो सकते।
अच्छा, पहले से ही मान लिया था।
हाँ, ये 19वीं सदी की वैज्ञानिक सोच का प्रभाव था। गुंकेल का तर्क था कि चूंकि हमने अपने आम जीवन में जानवर बात करते नहीं देखे हैं, इसलिए अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है तो वो इतिहास नहीं हो सकता।
लेकिन ये तर्क तो उन लोगों के लिए बहुत अजीब होगा जो उस धर्म को मानते हैं। अगर हम ईसा मसीह या उनके प्रेरितों की बात करें, तो उन्होंने तो इन कहानियों को सच ही माना था ना?
हाँ, बिल्कुल माना था।
तो गुंकेल इस बात को कैसे समझाते हैं?
गुंकेल ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि ईसा मसीह और उनके प्रेरित केवल अपने समय के बच्चे थे।
ओ, अपने समय के बच्चे, ये तो बहुत बड़ा बयान है।
बहुत बड़ा। उनका कहना था कि पहली सदी में लोग आलोचनात्मक इतिहास नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने आम धारणा के अनुसार उन्हें सच मान लिया। गुंकेल के लिए किसी प्राचीन व्यक्ति का विश्वास करना कहानी के ऐतिहासिक होने का प्रमाण नहीं था।
ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा जो एक एक पंक्ति को पत्थर की लकीर मानते हैं।
और इससे भी बड़ा झटका गुंकेल का एक मशहूर कथन था। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उत्पत्ति को एक शाब्दिक गद्य इतिहास के रूप में पढ़ता है, वो एक पवित्र बर्बर है।
पवित्र बर्बर, ये तो बहुत ही चुभने वाला तंज है।
हाँ, उनका मतलब था कि ऐसा व्यक्ति भले ही बहुत धार्मिक हो, लेकिन उसमें कलात्मकता की समझ नहीं है। वो उस व्यक्ति की तरह है जो किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखकर पूछे कि इसमें कितने ग्राम रंग का इस्तेमाल हुआ है।
सही कहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये सारी कहानियां शाब्दिक इतिहास नहीं है तो आखिर प्राचीन लोगों ने इन्हें गढ़ा ही क्यों?
बहुत बढ़िया सवाल है।
लोग अलाव के पास बैठकर ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुना रहे थे? इसका जवाब छिपा है एक अवधारणा में जिसे इटियोलॉजी या कारण विज्ञान कहा जाता है।
बिल्कुल, अपने आसपास की दुनिया को समझाने के लिए कहानियां बनाना, क्योंकि इंसान फितरत से जिज्ञासु है, उसे हर चीज का कारण चाहिए कि ऐसा क्यों है।
हाँ, और गुनखेल ने इन इटियोलॉजिकल कहानियों को कई श्रेणियों में बांटा। जैसे सबसे पहले आती हैं एथनोलॉजिकल कहानियां। प्राचीन काल में लोग पूछते थे कि हमारा कबीला उस कबीले से बेहतर क्यों है या कनान दास क्यों है।
हाँ, और इन सवालों का जवाब देने के लिए कहानियां गढ़ी गईं। इसके अलावा सेरिमोनियल या धार्मिक रीति रिवाजों को समझाने वाली कहानियां भी हैं।
जैसे फसा के दौरान बच्चे सवाल पूछते हैं या जॉर्डन नदी के पास वो 12 बड़े पत्थर क्यों रखे गए हैं।
बिल्कुल, हो सकता है वे पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां हों, लेकिन गुंकेल का मानना था कि लोगों ने उन्हें एक अर्थ देने के लिए कहानी बना दी। इसी तरह जियोलॉजिकल या भौगोलिक कहानियां भी आती हैं।
अच्छा, जैसे मृत सागर का निर्माण या लूत की पत्नी का नमक का खंबा बन जाना।
एकदम सही,
ये विज्ञान से पहले के समाज का विज्ञान था। और इसमें एक और मजेदार श्रेणी है, शब्द व्युत्पत्ति या इटिमोलॉजिकल कहानियां, जहां नामों का मतलब समझाया गया है।
हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही मजेदार आधुनिक उदाहरण पढ़ा था, मैनहट्टन और कनेक्टिकट नदी का।
ओ हाँ, वो उदाहरण तो एकदम सटीक है ये समझने के लिए कि एटियोलॉजी कैसे काम करती है।
जरा सोचिए, कुछ लोग गंभीरता से तर्क देते हैं कि कनेक्टिकट नदी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो राज्यों को कनेक्ट करती है और कट करती है। कनेक्ट, आई कट।
हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है।
और मैनहट्टन के लिए कहानी है कि कोई डच नाविक वहां आया, उसने बड़ी सी टोपी पहनी थी और किसी ने चिल्लाया मैनहट्टन और बस नाम पड़ गया मैनहट्टन।
हाँ, जब आप इसे सुनते हैं तो हंसी आती है क्योंकि ये पूरी तरह बकवास है। ये नाम वहां के मूल निवासियों की भाषाओं से आए हैं, लेकिन लोग आज भी इन कहानियों को मजे के लिए सच मानकर सुनाते हैं। गुंकेल का मानना था कि प्राचीन काल के लोगों का दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता था।
है ना, एकदम। उन्होंने भी नामों और जगहों को समझाने के लिए ऐसे ही मनगढ़ंत कारण बनाए थे, और यही वो सिट्स इम लेविन यानी जीवन की स्थिति थी। गुंकेल के लिए ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण था कहानी में छिपा मानवीय और धार्मिक संदेश।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी देर से हम स्क्रैप बुक्स और किंवदंतियों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी भी जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं।
बिल्कुल, वेलहाउसेन और गुंकेल ने हमें सिखाया कि टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस टेक्स्ट के पीछे छिपे इंसान को पढ़ना जरूरी है। हर कहानी हमें उस समय के समाज का एक आईना दिखाती है।
रिवाजों को समझाने के लिए ऐसी किंवदंतियां गढ़ी थी, तो जरा सोचिए आज के इस डिजिटल समाज में हम कौन सी नई किंवदंतियां गढ़ रहे हैं।
बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या आज से 1000 साल बाद के इतिहासकार, जब हमारी इंटरनेट संस्कृति, हमारे बनाए मीम्स और सोशल मीडिया के आख्यानों को देखेंगे, तो क्या वे कहेंगे कि ये 21वीं सदी के इंसानों का सिस्टम लिविन था?
बिल्कुल संभव है कि वैसा ही सोचे।
क्या वे कहेंगे कि तकनीकी रूप से इतने उन्नत होने के बावजूद हम भी अपनी जटिल दुनिया को समझाने के लिए नई डिजिटल कहानियां बुन रहे थे?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।
सच में सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस पड़ताल में बस इतना ही। जल्दी फिर किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।